डॉक्टर डेविड इमानुएल, सत्र 3, निर्गमन भजन 105। 2024 डेविड इमानुएल और टेड हिल्डेब्रांट। यह निर्गमन स्तोत्रों पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डेविड इमानुएल हैं। यह सत्र संख्या 3 है, भजन 105 याद रखें और आज्ञा पालन करें। तो हमने स्तोत्र 78 को देखा है, जो स्तोत्र का दूसरा सबसे लंबा स्तोत्र है। अब हम अपना ध्यान भजन 105 की ओर केंद्रित करते हैं, जिसका मैंने शीर्षक दिया है, याद रखें और आज्ञा पालन करें। परिचय। निर्गमन का मूल भाव इस विशेष स्तोत्र में इतिहास के बहुत लंबे चयन का हिस्सा है। तो यह पूरी तरह से उत्पत्ति में इब्राहिम को दिए गए वादे से जुड़ता है। तो यह बहुत लंबे इतिहास का हिस्सा है। ऐसा नहीं है, यदि आपको याद हो कि भजन 78 में लगभग हर चीज पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो इसका अधिकांश भाग लगभग 80-90% केवल निर्गमन रूपांकन और इसके विभिन्न भागों पर था। उसने इसके पीछे के क्रम के अनुसार इसे काटा और बदला। भजन 105 इब्राहिम की वाचा पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है और यह बहुत अधिक काटछांट या परिवर्तन नहीं करता है। भजन 105 का लिखित परंपरा के साथ अपेक्षाकृत मजबूत संबंध है। मैं आपको यह उतना दिखाने में सक्षम नहीं हूं जितना मैं दिखाना चाहता हूं, लेकिन भजन में कई जगह हैं। हम कुछ उदाहरण देखेंगे, लेकिन भजन में ऐसे कई स्थान हैं जहां हम देख सकते हैं कि यह स्पष्ट रूप से लिखित परंपरा, इसराइली परंपरा से जुड़ा हुआ है। हमारे पास बाइबल संकेत के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जहां भजनकार पाठक को कुछ पाठों से जोड़ने के लिए विशेष वाक्यांश विज्ञान और विशेष शब्दों का उपयोग करेगा। हम यहां इसके कुछ उत्कृष्ट उदाहरण देखेंगे। हम भी देखेंगे, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि इस स्तोत्र का इतिहास की पुस्तक में पुनः उपयोग किया गया है। स्तोत्र के पहले 15 छंद दिखाई देते हैं, जिन्हें मैं शब्दशः कहना चाहता हूं, लेकिन यह पूरी तरह शब्दशः नहीं है। इसमें कुछ बदलाव हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इतिहासकार ने भजनहार की सामग्री को अपना लिया है। कोई कह सकता है कि यह दूसरा तरीका है, लेकिन वास्तव में संभावना यह है कि यह इतिहासकार ही है जो वास्तव में भजन से सामग्री उधार लेता है। यह एक चर्चा है जिस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं। इस स्तोत्र में हम कुछ और भी देखने जा रहे हैं जो उल्लेखनीय है। हमने भजन 78 में देखा कि ईश्वर द्वारा किए गए चमत्कारों की पृष्ठभूमि में इसराइली विद्रोह एक प्रमुख विषय है। इस स्तोत्र में हम कुछ भी नकारात्मक देखने के लिए संघर्ष करते हैं। पूरे निर्गमन को शुरू से ही एक सकारात्मक अनुभव के रूप में देखा जाता है। तो आइए संरचना को देखें। हम लगभग 1-6 श्लोकों में आराधना करने के इस आह्वान के साथ आरंभ करते हैं। हम इसे और अधिक विस्तार से देखेंगे। फिर इब्राहिम से किया गया वादा है। इब्राहिम से किया गया वादा वास्तव में पूरे भजन के विषय या कथानक को शुरू करता है। परमेश्वर इब्राहिम से एक वादा करता है और शेष भजन में हम उस वादे को खतरे में देखते हैं और हम देखते हैं कि परमेश्वर उसकी रक्षा करने और उसके पूरा होने तक उसकी रक्षा करने के लिए आ रहा है। तो हमारे पास ऐसी घटनाएं हैं जो वादे की सुरक्षा पर इन कथाओं का निर्माण करती हैं। हमारे पास कुलपिता हैं, हमारे पास जोसेफ हैं, और फिर हमारे पास मिस्र में इसराइल है, और फिर अंतह रेगिस्तान में इसराइल है। तो हमारे पास निर्गमन के साथ साथ पहले की ऐतिहासिक सामग्री से दर्ज किए गए 4 उदाहरण हैं, जो बताते हैं कि भगवान ने इब्राहिम से जो वादा किया था वह कैसे खतरे में है। भगवान को अंदर आना होगा और अलौकिक रूप से हस्तक्षेप करना होगा। मैं यह नहीं कहता कि वह एक महान शक्ति है। उसे वादे को तब तक सुरक्षित रखने के लिए हस्तक्षेप करना होगा जब तक कि वह अंतः पूरा न हो जाए। फिर अंत में 44 और 42 में पूर्ति होती है। फिर इसके अंत में, जैसा कि मैंने पहले कहा था, स्तोत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान बिल्कुल अंत है, क्योंकि यही बात कही जा रही है। यहाँ इसके कुछ उत्कृष्ट उदाहरण देखेंगे, हम भी देखेंगे। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि इस स्तोत्र का इतिहास की पुस्तक में पुनः उपयोग किया गया है। स्तोत्र के पहले 15 छंद दिखाई देते हैं, जिन्हें मैं शब्दशः कहना चाहता हूँ, लेकिन यह पूरी तरह शब्दशः नहीं है। यहीं पर बड़ा सबक मिलता है जिस पर पाठक को गंभीरता से ध्यान देना होता है, और यही हम श्लोक 45 में पाते हैं। ईश्वर एक वादा करता है, एक वादा निभाना और उस वादे के प्रति वफादार रहना इसराइलियों के लिए कीमत के बिना नहीं आता है, या उन लोगों के लिए जो उसके द्वारा किए गए लाभों के प्राप्त करता है। तो आइए भजन को देखना शुरू करें। हम यहाँ से शुरू करते हैं, हे प्रभु को धन्यवाद दो। धन्यवाद देने की धारणा, जो ज्ञान साहित्य के विपरीत प्रशंसा का एक संदर्भ बनाती है, प्रशंसा और धन्यवाद का संदर्भ देती है। लेकिन धन्यवाद देने की धारणा आज हम जो समझते हैं उससे थोड़ी अलग है। बाइबल के दिनों में, विशेषकर भजनहार के साथ, जब हम धन्यवाद देने की बात करते हैं, तो हम केवल धन्यवाद कहने की बात नहीं कर रहे हैं, जो कि आज कई संदर्भों में होता है। लेकिन जब आप धन्यवाद देते हैं, तो आपको मूल रूप से दो चीजें करनी होती हैं। उनमें से एक यह है कि आपको इसे अपने मुंह से जोर से घोषित करना होगा। दूसरी बात यह है कि आपको वह सुनाना है जिसके लिए आप धन्यवाद दे रहे हैं। तो हम यह कहने में सक्षम हैं, धन्यवाद भगवान, क्योंकि मुझे नहीं पता आपने मुझे इस पूरे दिन बचा लिया। आप कहेंगे धन्यवाद भगवान, और आप विस्तार से बताएंगे कि उसने क्या किया है। यह आपकी कृतज्ञता की अभिव्यक्ति है। कुछ स्थानों पर आपको धन्यवाद शब्द दिखाई देगा, आइए एक नजर डालते हैं। मुझे लगता है कि हिब्रू में टोडा, होदा, टोडा शब्द कुछ इस तरह दिखेगा। टोडा एक जड़ से ये एडा, ऐसे वैसे। इस शब्द का वास्तव में अर्थ या भाव है कबूल करना और बोलना। तो हम न्यायाधीशों की पुस्तक में जेरिको की विजय के बाद के उदाहरण को देखते हैं, जहां भगवान कहते हैं, किसी भी सामान, किसी भी सामग्री को मत छुओ, बस इसे नष्ट कर दो। आकान इसराइलियों में से एक, वह चुपचाप अंदर आता है और कुछ कपड़े, चांदी का एक टुकड़ा और इस तरह का सामान ले जाता है। इसके परिणामस्वरूप इसराइलियों के विरुद्ध अपनी लड़ाई हार गए, भले ही यह एक अपेक्षाकृत छोटा शहर है। तब यहोशू भगवान की ओर मुड़ता है और कहता है, क्या हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान कहते हैं, क्योंकि किसी ने कुछ चुरा लिया है। तब भगवान उसे यह छानने की प्रक्रिया देना शुरू करते हैं कि यह किसने किया। अहान का परिवार बाकी इसराइलियों से अलग हो गया। यहोशू उसकी ओर मुड़ता है, और यह एक बहुत ही दिलचस्प वाक्यांश है, लेकिन वह कुछ ऐसा कहता है जैसे भगवान को महिमा दो। यह कहता है, उसे धन्यवाद दो, उसे आज दो। इसका अक्सर इसी तरह अनुवाद किया जाता है, यह प्रशंसा दे रहा है। लेकिन असली अर्थ यह है कि कबूल करो, अपने मुंह से बोलो कि तुमने क्या किया है। यही वह भाव है जो हमारे यहाँ इस भजन में है। जब वह कहता है, धन्यवाद दो, अपने मुंह से बोलो, स्वीकार करो कि उसने क्या किया है। यही भाव है, और भजन में यही होता है, क्योंकि भजनकार केवल धन्यवाद कहने के बजाय यह बताने वाला है कि भगवान ने क्या किया है। वह मौखिक रूप से भी इससे गुजरता है। हमें लोगों के बीच उनके कार्यों को उजागर करना है, उनके सभी चमत्कारों के बारे में बात करनी है। फिर हमने निफ्लाहोट का उल्लेख किया। ये वाक्यांश निफ्लाहोट गेडुलोट जो वास्तव में घटित होने वाले चमत्कारिक वाक्यांश हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें यहाँ यह शब्द मिला है कि उनके चमत्कारों को याद रखें जो उन्होंने किए हैं। जब हम बाइबल स्मरण के बारे में बात करते हैं तो 99% समय यह कोई मानसिक कार्य नहीं होता है। बाइबल का स्मरण कोई ऐसी चीज नहीं है जो मन में बसती है। यह मन में नहीं जीता और मरता है। बाइबल का स्मरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन में शुरू हो सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य हमेशा इसके साथ एक व्यावहारिक कार्रवाई जुड़ी होती है। इसलिए जब वह कह रहा है याद रखें कि भगवान ने क्या किया है, तो यह एक कप कॉफी के साथ बैठकर किसी चीज के बारे में पुरानी यादें रखना नहीं है, बल्कि यह याद रखना है कि उसने क्या किया है, ताकि आपका व्यवहार बदल सके और आप अलग हो सकें। आपने वास्तव में जो सुना है उसका परिणाम है। इसलिए आपको बाइबल स्मरण की इस अवधारणा में इसे ध्यान में रखना होगा। तो हम दूसरे खंड की ओर बढ़ते हैं, जो मूल रूप से ईश्वर है, वह वादा जो किया जा रहा है, वह वादा जिसे उत्पत्ति की पुस्तक में इब्राहिम को याद किया जा रहा है। हमारे पास यहाँ उत्पत्ति 15 की ओर जाने वाला एक स्पष्ट बाइबल संकेत है। उस दिन प्रभु ने इब्राहिम के साथ यह कहते हुए एक वाचा बांधी कि मैंने यह भूमि तुम्हारे वंशजों को दी है। मैं कनान देश को तेरे निज भाग में से एक भाग करके तुझे दूंगा। यहाँ पर एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है। यह वह वादा है जो वास्तव में भजनहार के मन में है, और वह चाहता है कि आप इसके बारे में सोचें। इसलिए इस बिंदु पर कनेक्शन अपेक्षाकृत स्पष्ट है। लेकिन एक बदलाव किया जा रहा है जो काफी सूक्ष्म है। हमें इसका ध्यान रखना होगा। इस वादे में सिर्फ जमीन के लिए ही नहीं बल्कि संतान के लिए भी किया गया है। यह सुरक्षा के लिए भी बनाया गया है। जो तुझे शाप देगा वह शापित होगा, जो तुम्हें आशीर्वाद देगा वह धन्य होगा। लेकिन ये पहलू भजन का केंद्र बिंदु नहीं है। उन्हें केवल जमीन के वादे की परवाह है। इस विशेष स्तोत्र के लिए भूमि की बहुत महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। यह तर्क दिया गया है कि भजन निर्वासन के बाद लिखा गया था। यह निर्वासन के बाद या निर्वासन के दौरान का स्तोत्र है। तो यह उस समय लिखा गया होगा जब इसराइलियों के पास अपनी जमीन नहीं थी और वे जमीन के इस वादे को याद कर रहे हैं जो उन्हें दी गई थी, या वे अभी अभी जमीन पर वापस आए थे और जमीन के उस वादे को याद करते हुए कह रहे थे, हाँ हम वास्तव में यहीं के हैं। यह मान लेना एक उचित बात है। मैं वेगास जाकर उस पर दाव लगाना कितना तथ्यात्मक होगा, मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन भजन के संदर्भ से यह मानना एक तार्किक बात है। अगले भाग की ओर बढ़ते हुए हमारे पास इज़राइल की भूमि के लिए किए गए वादे हैं। अब हम इन लघु आख्यानों या कथा प्रकार के अनुभागों की ओर बढ़ते हैं जो उस समय के बारे में बताते हैं जब वादा खतरे में था या खतरे में था। हम यहाँ इसी से शुरुआत करते हैं और यही बात इस भजन को इतना उत्कृष्ट और उत्कृष्ट बनाती है कि भजनकार मूल रूप से बाइबल संकेत की अवधारणा का उपयोग कर रहा है, जैसा कि हम जानते हैं। तो वह यहाँ कहते हैं, जब वे संख्या में केवल कुछ ही लोग थे, बहुत कम और अजनबी थे। अब यदि आप बाइबल को नहीं जानते हैं, यदि आप बाइबल के इतिहास को नहीं जानते हैं, तो आप बस यही सोचेंगे, ठीक है, एक समय था जब देश में कुलपिता केवल कुछ ही लोग थे। लेकिन यदि आप बाइबल साहित्य जानते हैं, और मेरा मानना है कि जब हम भजन पढ़ते हैं तो भजनकार इसी पर निर्भर होता है, यदि आप बाइबल साहित्य जानते हैं तो आप उत्पत्ति 34 में इस अंश को जानेंगे। यहाँ क्या होता है कि याकूब के दो बेटे उकसाते हैं, शकेम के लोगों का सहार करो। परिणाम स्वरूप जैकब को अत्यधिक खतरा महसूस होता है। वह सोचता है कि आस पड़ोस या आसपास के शहरों के लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा और वे आ जाएंगे और उसे धमकाएंगे। इसलिए वह यह कहता है कि तूने उस देश के रहने वालों कनानियों और परिजियों के लिए मेरे लिए दुर्गंध उत्पन्न करके मुझ पर विपत्ति डाली है। मेरी संख्या कम है और यदि वे एकत्र होकर मुझ पर आक्रमण करेंगे तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। यह अभिव्यक्ति संख्या में कुछ इस कथा प्रसंग में इन दो स्थानों पर घटित होती है। तो यह स्पष्ट है कि लेखक जो कर रहा है वह पाठक के दिमाग को सक्रिय कर रहा है। तो यह एक ऐसा मामला था जिसमें वादा खतरे में था, क्योंकि अगर याकूब का डर सच हो गया तो कनानियों और परिजियों ने उसके खिलाफ आकर उसे नष्ट कर दिया तो इब्राहिम से किया गया वादा शून्य और शून्य हो जाएगा। यह विफल हो गया है क्योंकि लोग मर चुके हैं और इब्राहिम के वंशज भूमि का उत्तराधिकार नहीं पा सकेंगे। तो हम यहाँ केवल एक छोटे से वाक्यांश में देखते हैं। यदि आप पाठ को जानते हैं तो लेखक आपके दिमाग तक पहुँच रहा है और वह उत्पत्ति के पूरे संदर्भ को अपने भजन में खींच रहा है, क्योंकि यह उसकी बात को पुष्ट करता है। उन्हें पूरी घटना का हवाला देने की जरूरत नहीं है। जाहिर है वहां कोई अध्याय और छंद नहीं था जिसे वह पढ़ सके। वह कुछ शब्दों का उपयोग करके ऐसा करता है जो आपको उस विशेष कहानी से जोड़ देगा और इसलिए आप बाकी अंतरालों को भर देंगे। वही बात फिर से होती है। वे एक देश से दूसरे देश में घूमते रहते हैं। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए राजाओं को डांटा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और मेरे भविष्यद्वक्ता कोई हानि नहीं पहुंचाते। अब मैंने इसे उस विशेष तरीके से उजागर किया है क्योंकि फिर से हम एक और सशक्त संरचना देखते हैं। इस चियास्मस का यहाँ फिर से उल्लेख किया गया है जो एबी के बाद बीए हैं। चलिए वहां टैग लगाते हैं। तो हमें वह क्रॉसिंग कार्रवाई वहीं चल रही है। तो हमारे पास है स्पर्श न करना हानि न पहुंचाने के समान है। हमारे पास मेरे अभिषिक्त लोग हैं और आपके पास मेरे भविष्यवक्ता हैं। वे वहां दो संगत तत्व हैं। यह सशक्त है। परमेश्वर अपने अभिषिक्त लोगों, अपने लोगों को रोकने या उनकी रक्षा करने के लिए हस्तक्षेप करता है। यहां एक बार फिर हमें बाइबल के संकेत के सक्रिय होने का यह विचार मिला है और यह इस भविष्यवक्ता शब्द से आया है। पैगंबर शब्द का प्रयोग कुलपतियों के संबंध में एकमात्र बार इस उदाहरण में होता है जब इब्राहिम पलिश्ती देश में जाता है और अबीमेलेक उसकी पत्नी को ले जाता है और भगवान को एक सपने के माध्यम से हस्तक्षेप करना पड़ता है और कहना पड़ता है, इस आदमी को उसकी पत्नी वापस दे दो। वह ऐसा करता है। वह हस्तक्षेप करता है। उसने राजा को डांटा, ठीक वैसा ही हुआ। उसने ये बातें कहकर नहीं, परंतु यह कहकर पलिश्तियों के राजा को डांटा कि यह मनुष्य भविष्यद्वक्ता है। उस आदमी की पत्नी को लौटा दो, वह एक भविष्यवक्ता है। वह तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा और तुम जीवित रहोगे। तो हमें एक और उत्कृष्ट बाइबल संकेत मिला है जहां भजनहार पहुंचता है, एक बड़े पाठ को पकड़ता है और उस अर्थ को लाता है, भले ही वह उन शब्दों की पसंद के साथ अपेक्षाकृत किफायती हो जो वह वास्तव में उपयोग करता है। भजन 17 से 22 तक हमारे पास जोसेफ की कहानी है। पुनः यदि यूसुफ मर जाता तो कनान देश में याकूब में उसका परिवार अकाल से मर जाता और वादा व्यर्थ हो जाता। वादा हमेशा पृष्ठभूमि में लटका रहता है। यह एक धागे पर लटका हुआ है। क्या भगवान इसे पूरा कर सकते हैं? क्या परमेश्वर उसे बरकरार रख सकता है जो उसने कहा था कि वह करने जा रहा है? और इसलिए हमारे पास जोसेफ की कहानी यही है। स्पष्ट रूप से भाइयों का कोई उल्लेख नहीं है और वे उसे बेच रहे हैं। पोतीपर और उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ इसका कोई उल्लेख नहीं है। इस विशेष समय में सब कुछ सकारात्मक है और सब कुछ बहुत हद तक ईश्वरीय दृष्टिकोण से है। सब कुछ भगवान के हाथ में है। इस पूरे भजन में हम देखते हैं कि यह लगभग वैसा ही है जैसे घटनाएं पृथ्वी पर घटित होती हैं। यह लगभग वैसा ही है जैसे इस भजन में हम तार को एक कुशल कठपुतली कलाकार तक जाते हुए देख सकते हैं जो भगवान है और वह होने वाली हर स्थिति को नियंत्रित कर रहा है। कोई गलती नहीं है, कोई संयोग नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं होती। जो कुछ भी हो रहा है उस पर भगवान का पूरा नियंत्रण है। हम इसे इस पूरे भजन में देखते हैं। यहां कहा गया है कि उसने देश पर अकाल पड़ने का आह्वान किया। जब हम भजनहार के दृष्टिकोण को देखते हैं कि क्या हो रहा है तो भगवान अकाल बुलाते हैं। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक पर जाएं तो यह बस इतना कहती है कि भूमि पर अकाल पड़ा था। इसमें ईश्वर के आह्वान, ईश्वर द्वारा इसे घटित करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। तो हमारे पास यह दिव्य दृष्टिकोण है या हमारे पास ईश्वर का यह दृष्टिकोण है कि जो कुछ भी घटित हुआ उसे नियंत्रित करता है और अपनी इच्छा के अनुसार इसे पूरी तरह से व्यवस्थित करता है। हम यहाँ इस उदाहरण को भी देखते हैं, जब तक कि उसका वचन, वह परमेश्वर का वचन पूरा नहीं हो गया तब तक परमेश्वर के वचन ने उसकी परीक्षा ली। तो यहाँ फिर से यह एक व्याख्यात्मक लेंस है जो हमें दिया जा रहा है, क्योंकि जब आप जोसेफ में कहानी पढ़ते हैं तो जोसेफ अपने भाइयों के साथ, पोतीपर की पत्नी के साथ इन सभी चीजों से गुजरता है। वह नहीं जानता कि क्या हो रहा है। यह नहीं कह रहा है कि भगवान ने यह किया और भगवान ने वह किया, भगवान ने दूसरा किया। यह बस होता है और उसे इससे निपटना होगा। लेकिन यहाँ भजनहार में भजनकार इसे चित्रित करता है, यह ईश्वर उसकी परीक्षा ले रहा है। यह धातु का परीक्षण करने जैसा है। आप अशुद्धियों से छुटकारा पाने के लिए धातु को गर्म कर रहे हैं। तुम इसे पवित्र बना रहे हो। आप इसे उपयोग के योग्य बना रहे हैं। और यह वैसा ही है जैसा भजनहार इस विशेष परिदृश्य को देखता है। मैं इसके बारे में भी यहीं एक संक्षिप्त शब्द कहूंगा। यहां यह वाक्यांश कहता है, राजा ने उसे भेजा और रिहा कर दिया। ऐसे विभिन्न तरीके हैं जिनसे हम इसे समझ भी सकते हैं। यहां लिखा है कि राजा ने उसे भेजकर छुड़वाया। मैं तर्क देता हूं, जैसा कि मैंने पहले भी तर्क दिया है, कि इसे पढ़ने के कम से कम दो तरीके हैं। हिब्रू में यह कुछ कुछ शलाक जैसा लग सकता है। मुझे लगता है कि आपको इस पर लेख मिल गया है, लेकिन आपके पास शालाच मिलेच है। मुझे लगता है यह कुछ वैसा ही दिखेगा। शलाक मेलेक राजा ने भेजा, वस्तुतः यह उसका भेजा हुआ होगा और यह राजा होगा। मैं इसे इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इसे समझने का एक तरीका या सामान्य तरीका यह है कि राजा ने यूसुफ को भेजा और रिहा कर दिया। लेकिन हिब्रू, क्योंकि यह कविता में है और क्योंकि यह अपेक्षाकृत विरल है, हम उतनी ही आसानी से पढ़ सकते हैं जिसे भगवान ने भेजा है। अथ वह राजा नहीं है, परंतु वह वास्तव में परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने राजा को भेजा और तब राजा ने आज्ञाकारी होकर यूसुफ को रिहा कर दिया। मुझे भजन पढ़ने का वह तरीका पसंद है क्योंकि यह ईश्वर को हर चीज पर अंतिम नियंत्रण देता है। वह निश्चित रूप से भजनहार का एमओ है। तो यह उसमें बहुत बहुत अच्छी तरह से फिट बैठता है। दूसरी बात जो उस व्याख्या की ओर ले जाती है वह बस यह है कि शलाक शब्द भजन में तीन बार प्रकट होता है और भगवान हमेशा क्रिया का विषय होता है, कभी कोई और नहीं। इसलिए इसे वास्तव में कैसे प्रस्तुत किया जाता है, इसमें कुछ हद तक अस्पष्टता है। इसके कुछ शाब्दिक संस्करण हैं। मुझे लगता है कि यंग का शाब्दिक अनुवाद वास्तव में इसे ऐसे प्रस्तुत करता है कि भगवान राजा को भेजता है और राजा आज्ञाकारी होता है। मुझे बस यही लगता है कि यह वास्तव में भजन में बेहतर काम करता है। तो हम मिस्र में इज़राइल की ओर बढ़ते हैं। यह तब होता है जब वे अंदर जाते हैं। यह उत्पत्ति और निर्गमन के बीच के अंतर से आगे बढ़ रहा है। हम जिम्मेदारी के इस बदलाव को और अधिक देखते हैं। यहाँ कहा गया है, उसने, जो कि परमेश्वर है, अपने लोगों को बहुत फलदायी बनाया। जब हमने निर्गमन में पाठ पढ़ा, तो इसराइल के पुत्र फलदायी थे। वे बिना किसी विशेष माध्यम के केवल फलदायी थे। लेकिन अब भजनहार के दृष्टिकोण से भगवान की भूमिका ऊंची है और वह उन्हें फलदायी बनाता है। यह कोई दुर्घटना नहीं थी। यह सब परमेश्वर के उद्देश्यों और योजनाओं के अनुसार कार्य करता था। हम यहाँ मिस्र शब्द के साथ एक बहुत ही चतुर बात खुलते हुए भी देखते हैं। यह किसी चीज का उद्घाटन है जिसे समावेशन या समावेशन कहा जाता है। इस मामले में इसे काफी चतुराई से चिह्नित किया गया है। खैर, भजनहार ने मूल रूप से जो किया है वह यह है कि उसने शब्द का उपयोग किया है। यदि यह भजन है तो आइए भजन को इस तरह से योजनाबद्ध करें। फिर वह मिस्र शब्द का उपयोग करता है और फिर वह उसके विवरण में चला जाता है। वह जो करता है वह विशेष रूप से चतुराईपूर्ण है। वह यह है कि जब तक इसराइली मिस्र नहीं छोड़ देते, तब तक वह कभी भी मिस्र शब्द का उपयोग नहीं करता है। पाठ के इस खंड के अंदर इसराइली मिस्र में रहते हैं, लेकिन वह कभी भी इस शब्द का उपयोग नहीं करता है, भले ही उसके पास ऐसा करने का अवसर हो। अतः वह विभिन्न प्रकार के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करेगा। हम उनमें से कुछ को देखेंगे या वह सर्वनाम, उन्हें और इस तरह की चीजों का उपयोग करता है। परंतु जब तक इसराइली चले नहीं जाते, तब तक वह मिस्र शब्द का प्रयोग दोबारा नहीं करता। यह कुछ ऐसा है जिसे समावेशन या समावेशन कहा जाता है। यह कुछ पाठों को बाकी सामग्री से अलग करने या अलग करने का एक साधन है। इस मामले में भजनहार के लिए मिस्र का उपयोग करने का एक अद्भुत अवसर है, लेकिन वह यह नहीं कहता, चमत्कार कहा? हाम की भूमि। वह इस खंड में हर समय ऐसा करता है, जो वास्तव में काफी चतुर है। हमारे यहाँ कुछ है, मूसा और हारून दोनों का उल्लेख है। उनका उल्लेख किया गया है, लेकिन यह लगभग एक अनौपचारिक उल्लेख है, क्योंकि भले ही वे प्रकट होते हैं और नामित हैं, यदि आपको भजन 78 में याद है तो हमने उनका कोई उल्लेख नहीं देखा है। उनका नाम यहाँ दिया गया है, लेकिन जब विपत्तियों और उन चीजों की बात आती है जो भगवान करते हैं, तो वे वास्तव में ऐसा नहीं करते हैं। हम भगवान के उस एक वचन, तीसरे पुरुषवाचक एक वचन की ओर वापस दौड़ते हैं जो सब कुछ स्वयं करता है। लेकिन कम से कम उनका उल्लेख यहाँ किया गया है। उन्हें सभी कार्यवाहियों में किसी न किसी प्रकार की कैमियो भूमिका मिलती है। जब समग्र रूप से विपत्तियों की बात आती है तो हम इन्हें और अधिक विस्तार से देखने जा रहे हैं। विपत्तियों का उल्लेख केवल भजन 105 और 78 में मिलता है। केवल उनमें विपत्तियों का पूर्ण वर्णन है। बाकी हर जगह हम वास्तव में केवल पहले जन्मे बच्चे और एक सामान्य प्रकार का ही उल्लेख करेंगे, उसने मिस्रवासियों को हराया। लेकिन अब हमारे पास इस विशेष स्थान पर प्लेग की एक और पूर्ण प्रस्तुति है। यह निर्गमन की 10 विपत्तियों की एक छवि मात्र है। लेकिन जैसा कि हम पता लगाने जा रहे हैं, हमें यहाँ 10 विपत्तियां नहीं मिलती। एक बार फिर हमें केवल 7 मिले। ऐसा प्रतीत होता है मानो हमें केवल 7 ही मिले हैं। तो हम अंधेरे से शुरू करते हैं, अंधेरा भेजते हैं और उसे अंधेरा बनाते हैं। हमें यहाँ यह अभिव्यक्ति मिली है कि उसने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसके शब्दों के खिलाफ विद्रोह नहीं किया, जो वास्तव में क्या विद्रोह नहीं किया। क्या यह मूसा और हारून के विद्रोह न करने का संदर्भ है, या क्या यह अंधकार का संदर्भ है और ये विपत्तियां उसके वचन के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर रही हैं? शायद वहां थोड़ा दोहरा अर्थ है। अंधेरे को सबसे कम गंभीर माना जाता है और इन विपत्तियों के साथ हम यह देखने जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम उन सभी से गुजरते हैं, यह बढ़ती तीव्रता का एक मजबूत मामला है। तो हम अंधेरे से शुरू करते हैं, जाहिर तौर पर निर्गमन वृत्तांत से एक कदम जो अंतिम है, और अब हम यहाँ हैं। फिर हमें खून मिला है जो मछलियों को मारता है। यही वह क्षति है जो शायद अंधेरे की तुलना में थोड़ी अधिक कठोर होती है। मैं यह भी कहूंगा, क्योंकि हमारे पास यह सब है, मैंने उल्लेख किया है कि विपत्तियों का पूरा विवरण केवल भजन 105 और भजन 78 में है। लेकिन मैं कहूंगा कि कुमरान में एक स्क्रॉल है, मुझे लगता है कि यह है 4Q422, जिसमें प्लेग का प्रतिपादन भी है, लेकिन वहां लगभग 9 प्लेगों का ही उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि स्क्रॉल पर मुझे अभी भी कुछ काम करने की आवश्यकता है। इस पर कुछ लेख तैयार किए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भजन उस पाठ को समर्पित होकर थोड़ा और काम करने की जरूरत है। अब अगला क्या होगा? इसके बाद हमारे पास मेंढक हैं, जिन्हें एक उपद्रव के रूप में देखा जाता है। वे राजाओं के कक्ष में भी मेंढक हैं। भजन 78 के मेंढकों के विपरीत ये निगलने वाले मेंढक नहीं हैं। तो ये वे नहीं हैं जो कोई शारीरिक क्षति पहुंचाते हैं। वे राजा के कक्ष में जाते हैं और वे उसे प्रभावित करते हैं, लेकिन वे कोई नुकसान या स्थायी क्षति नहीं पहुंचाते हैं। फिर हमें फिर से झुंड मिल गए हैं। हम अरोव के मुद्दे पर वापस आते हैं। अरोव क्या है? मैंने पहले कहा था, क्षमा करें, भजन 78 की पुस्तक में अरोव जंगली जानवर प्रतीत होते थे। कम से कम यहूदी साहित्य में एक परंपरा थी, निश्चित रूप से बहुत मजबूत। अरोव आप यह कैसे करेंगे? आइए बस तर्क के लिए ऐसा करें। लेकिन यहाँ यह कीड़ों से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो झुंडों यहाँ मक्खियों और मच्छरों के झुंड हैं। लेकिन अगर हम झुंड के रूप में अरोव के उस अर्थ पर वापस जाते हैं, तो यह पढ़ना बेहतर हो सकता है, और उनके पूरे क्षेत्र में झुंड कुटकियां सामने आईं। उस अर्थ में श्लोक का दूसरा भाग पहले भाग की व्याख्या करेगा। तो पहले आपके पास एक सामान्य विवरण होगा कि झुंड थे, और दूसरा भाग उनके सभी क्षेत्रों में अधिक विशिष्ट मच्छरों का है। यह इसे देखने का एक और तरीका है, ताकि झुंड के इस विचार से दूर जा सकें कि अनिवार्य रूप से मक्खियां होती हैं, जिसे मैं विशेष रूप से मक्खियों के रूप में झुंड के बारे में नहीं सोचना पसंद करता हूं, क्योंकि यह शब्द वास्तव में ऐसा नहीं कहता है। तो एक या दो विपत्तियां, मैं इसे एक के रूप में गिनूंगा। यह एक और गैर विनाशकारी प्लेग है जो मिस्रवासियों के खिलाफ भेजा गया था। एक बार फिर भी ये वो बातें हैं जो उन्होंने कही और वो आईं। ये वे चीजें हैं जिन्हें परमेश्वर ने जानबूझकर किया है। यह नहीं कहता कि उन्होंने बात की। इसका मतलब यह नहीं है कि मूसा और हारून ने बात की थी, बल्कि यह ईश्वर है जो बोलता है, और वह सीधे तौर पर इन विपत्तियों को लागू करता है। हेलन अग्नि केवल पौधों को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ हम प्रति प्लेग दो छंद देखते हैं। यहाँ यही है, लेकिन हमारे पास हेलन अग्नि है, जिसे निर्गमन परंपरा में भी मान्यता प्राप्त है। तो यह बहुत अच्छा है। इसके अलावा टिड्डी, जो अभी भी पौधों को प्रभावित करती है, उसके लिए दो अन्य छंद समर्पित हैं। और असंख्य टिड्डियां और युवा टिड्डियां आईं, और सब उपज और भूमि की उपज चट कर गईं। तो हमें यह मिल गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी प्रकार की तीव्रता बढ़ रही है। फिर निःसंदेह हमारा पहला बच्चा है। तो भजन 78 और यहाँ इस भजन दोनों में पहलौठा हमेशा अंतिम विपत्ति है। अब पहले बच्चे की प्लेग अंतिम प्लेग है, लेकिन इसे हमेशा सबसे महत्वपूर्ण के रूप में देखा जाता है। यह इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि अन्य सभी विपत्तियों को संभवतः सृष्टि के किसी भी तरह अनियंत्रित रूप से चलने से समझाया जा सकता है। तो आपके पास ये सभी मेंढक हैं, आपके पास ये सभी झुंड हैं। ये ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें उन्होंने अतीत में अच्छी तरह से अनुभव किया होगा। अंधेरे का प्लेग ठीक है, यह कुछ वर्णन का ग्रहण हो सकता था। रक्त की महामारी, जैसा कि आज विज्ञान के कुछ लोगों ने कहा है, एक विशेष प्रकार का शैवाल रहा होगा जिसने उस समय नदियों को प्रभावित किया होगा। टिड्डियां, खैर टिड्डियां तो आई ही, ओलावृष्टि तो आई ही। लेकिन जब हम एक प्लेग के बारे में बात कर रहे हैं जो केवल मिस्रवासियों के पहले बच्चे को प्रभावित करता है, तो यह बहुत अलग है। जैसा कि पवित्र शास्त्र में लिखा है, यह ईश्वर का हाथ है। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो केवल भगवान ही कर सकता है। तो यह सिर्फ विनाशकारी नहीं है, यह न केवल अपने प्रभावों में शक्तिशाली है, बल्कि जब आप इसके कारण के बारे में सोचते हैं तो यह शक्तिशाली होता है। यह एक पवित्र ईश्वर की ओर इशारा कर रहा है जो इस मामले में अविश्वसनीय रूप से चयनात्मक है कि वह किसे मारता है। इसलिए यह अविश्वसनीय रूप से प्रासंगिक है, शायद यही कारण है कि यह हमेशा अंतिम स्थान पर रहता है। हमें एक कदम पीछे हटना होगा और याद रखना होगा, यह सब लोगों की रक्षा के बारे में है। यदि दासों, इसराइलियों को मिस्र में गुलामी में रखा जाता है, तो कोई पलायन नहीं हो सकता है। वे भूमि में प्रवेश नहीं कर सकते। भगवान का वादा विफल हो जाता है। इसलिए भगवान को अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उन्हें बाहर निकालने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने वादे की रक्षा करना है। तो अब हम बाहर निकलते हैं। वे बाहर आ गए हैं। तब वह उन्हें चांदी और सोने के साथ बाहर लाया। इसमें यहां उल्लेख है, मिस्र खुश था और यहां हम चलते हैं। वे अब मिस्र छोड़ चुके हैं। तो अब हम मिस्र शब्द को प्रकट होते देखते हैं। यह उस समावेशन का अंत था जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था। यही हम इसे देखते हैं। भजन में इस बिंदु तक लोगों, राजाओं से खतरा था जो कुलपतियों को धमकी दे रहे थे। हमने फिरौन को यूसुफ और इसराइलियों को गुलाम बनाने की धमकी दी थी। लेकिन अब जब वे रेगिस्तान में जाते हैं तो खतरा लोगों से नहीं है, बल्कि खतरा सृष्टि से है। यह सूरज से है, यह भूख से है और रेगिस्तान में इस तरह की चीजों से है। हम बादल का एक दिलचस्प वर्णन देखते हैं। उसने आड़ के लिए बादल फैलाया। यह दिलचस्प है क्योंकि एक्सोडस में बादल आवरण के रूप में कार्य नहीं करता है। बादल एक मार्गदर्शक है। यह बादल का एक खंभा है जो इसराइलियों का उस दिन मार्गदर्शन करता है जब वे उसका अनुसरण करते हैं। वह भी रात्रि में अग्नि का खंभा होता है। तो यह एक मार्गदर्शक है, लेकिन यहाँ यह आवरण के रूप में बादल की एक अलग परंपरा को प्रतिबिंबित करता प्रतीत होता है। यहाँ यशायाह 4:5 में कुछ इसी तरह की बात है, और प्रभु सियोन पर्वत के पूरे क्षेत्र पर और हमारे ऊपर दिन में एक बादल और रात में धुआं और धधकती आग की चमक पैदा करेगा। तो यहाँ यशायाह 4:5 के संदर्भ में यह बादल दिन के दौरान सूरज की गर्मी से सुरक्षात्मक है। यह विचार यहां भी प्रतिबिंबित होता प्रतीत होता है। फिर अन्य यहूदी परंपराएं भी हैं। मुझे लगता है कि बेन सिरा में भी आपको इसी तरह का एक विचार प्रतिबिंबित होता दिखेगा, जिसमें बादल सिर्फ एक मार्गदर्शक नहीं है बल्कि वह लोगों की रक्षा भी करता है। मेरा तर्क है कि सुरक्षा की यह धारणा भजन 105 के संदर्भ में अधिक मजबूत है, क्योंकि भगवान अपने लोगों की उसी तरह रक्षा कर रहे हैं जैसे वह अपने वादे की रक्षा किसी भी ऐसी चीज से कर रहे हैं जो इसे खतरे में डाल सकती है। तो हम रेगिस्तान के रूपांकन का यह प्रतिपादन देखते हैं। पानी के लिए शिकायत का कोई संकेत नहीं, भोजन के लिए शिकायत, मूसा के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं। यदि हमारे पास निर्गमन का केवल यही विवरण हो तो यह सबसे अधिक खुशी का अवसर होगा। भजनहार यही चाहता है कि आप इस पर विश्वास करें, कम से कम इस विशेष समय के लिए। इसलिए वह किसी भी नकारात्मक चीज को छोड़ देता है। यह बाइबल व्याख्या का एक पहलू है। वह केवल सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत कर रहा है। यह स्पष्टतः एक शाश्वत आशावादी द्वारा लिखा गया था। अब हम यहाँ इस अनुभाग पर आते हैं जहाँ हम वादे पर लौटते हैं। यही भजन के पहले भाग का संकेत है। तुम्हें इब्राहीम के साथ यह पवित्र वचन याद है, वह वाचा जो उसने इब्राहीम के साथ बांधी थी और इसहाक को दी गई शपथ। तो अब हम पूरा चक्कर लगा रहे हैं। उसने यह सब इसलिए किया क्योंकि उसे अपने पवित्र वचन याद थे, वह वादा जो उसने श्लोक 9 में किया था। हाँ, उसे वह वादा याद है और वह उसके प्रति वफादार है। वह अपने लोगों को आनंद के साथ बाहर ले आया और उसने उन्हें राष्ट्रों की भूमि दी। इसलिए परमेश्वर ने जो करने का वादा किया था वह उसे पूरा करने में सक्षम था। वह उन्हें उस देश में लाया और यह अद्भुत है, लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं होता है। हाँ, उसने ऐसा किया। हाँ, उसने अपना वादा कायम रखा। हाँ, वह अपने लोगों के प्रति अच्छा था, परंतु अब हम पर लोगों का दायित्व है कि वे उसकी विधियों का पालन करें और उसके नियमों का पालन करें। हाँ, उसने ऐसा किया, लेकिन यह सब उन्हें यह एहसास दिलाने के लिए है कि उन्हें उसकी सेवा करने की जरूरत है। उनके प्रति उसकी वफादारी के परिणाम स्वरूप उन्हें उसके कानून का पालन करने की आवश्यकता है। यह कुछ वैसा ही है जैसा भजन 78 के साथ नहीं हुआ। अब एक बार फिर हम इस शिष्ट पैटर्न को देखते हैं, उसकी विधियों, उसके कानूनों का पालन करते हैं, पालन करते हैं और वह अंत में है। आप यह भी देखेंगे कि इस चियास्मस का उपयोग अक्सर किसी भजन के अंत में या किसी बहुत ही महत्वपूर्ण खंड के अंत में किया जाता है, क्योंकि यह पाठकों को एक बहुत ही विशिष्ट संदेश देता है। विपत्तियों पर कुछ व्याख्यात्मक टिप्पणियां। अंधकार, प्रथम प्लेग से ज्येष्ठ जन्म तक क्रमिक तीव्रता के इस विचार का उल्लेख कुछ विद्वानों द्वारा किया गया है। अंधेरे से हानिरहित असुविधा होती है। तुम्हें वह खून मिला है जो मछलियां तो मार देता है, लोगों पर असर नहीं करता। मेंढक राजा के लिए असुविधा बन गए। तो अब हम रॉयल्टी का अतिक्रमण कर रहे हैं। आपके पास झुंड और जू हैं, जो संभवतः दोहरा हमला है या सिर्फ जू हैं। तथ्य यह है कि उन्हें उन दोनों का उल्लेख मिला है जो निर्गमन की पुस्तक में दो अलग अलग विपत्तियों के रूप में दर्ज हैं, तीव्रता की एक डिग्री का सुझाव दे सकते हैं। फिर हमारे पास ओलों और टिड्डियों के प्रति प्लेग के प्रति दो छंदों की ओर कदम है। तब अंततः तुम्हें मनुष्यों के लिए मृत्यु मिल गई। बहुत से लोगों ने इसे तीव्रता के एक क्रमिक स्तर के रूप में देखा है, जिसमें भगवान थोड़ा अधिक क्रोधित होते हैं, थोड़ा और क्रोधित होते हैं, थोड़ा और क्रोधित होते हैं। फिर वह पहले बच्चे को मार डालता है और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ और बातें यहीं, व्याख्यात्मक नोट्स। इस स्तोत्र में एक बाध्यकारी रूपांकन या विचार के रूप में परमेश्वर का वचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आप श्लोक 5 को देखते हैं तो उसके द्वारा किए गए चमत्कारिक कार्यों, चमत्कारों और उसके द्वारा सुनाए गए निर्णयों, भगवान द्वारा बोले गए निर्णयों को याद रखें। हम प्रत्यक्ष भाषण पाते हैं। परमेश्वर कहते हैं, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ। यदि आप श्लोक 5 के आलोक में इसे देखें तो उनके द्वारा सुनाए गए निर्णयों में से एक राजा से यह कहना है, मेरे अभिषिक्त लोगों को मत छुओ। परमेश्वर ने भूमि पर अकाल बुलाया। यह कुछ ऐसा है जो उसने फिर से कहा। यह उसके मुंह का निर्णय है जिसे वह बोलता है। परमेश्वर का वचन, एक वचन, परमेश्वर का एक कथन पद 19 में यूसुफ की परीक्षा लेता है। पद 31, परमेश्वर ने बात की और मक्खियां निकल आईं। फिर वह बोलता है और फिर ऐसा होता है। उसने बात की और टिड्डियां भी आ गईं। इसलिए हम परमेश्वर के बोले गए वचन पर इस जोर को देखते हैं। हमने इसे भजन 136 में कभी नहीं देखा। हमने इसे भजन 78 में भी कभी नहीं देखा। इस स्तोत्र में कुछ बहुत ही अनोखा है। नकारात्मकता अनुपस्थित है, कोई नकारात्मक घटना नहीं। इब्राहिम का झूठ, उसने दो बार राजाओं को यह कहकर मुसीबत में डाल दिया कि सारा उसकी बहन थी, उसका कोई जिक्र नहीं। जोसेफ के भाई ने उसे बेचा, इसका कोई जिक्र नहीं है। केवल सकारात्मक चीजें, रेगिस्तान में भोजन की शिकायतें, कादेश में विद्रोह, महान विद्रोह जब वे पहली बार वादा किए गए देश में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। ये सभी चीजें निर्गमन वृत्तांत में घटित होती हैं, लेकिन भजनहार के लक्ष्यों के कारण वह किसी भी नकारात्मक बात का उल्लेख नहीं करता है। तो इस विशेष स्तोत्र में संक्षेप में कहें तो ध्यान इस बात पर है कि ईश्वर अपना वादा पूरा कर रहा है और लोगों और वादे की रक्षा कर रहा है। वे दो चीजें हैं जो एक साथ जुड़ी हुई हैं। लोग नष्ट हो गए, वादा विफल हो गया। कवर किया गया इतिहास सिर्फ निर्गमन नहीं है, बल्कि हम इब्राहिम से लेकर वादा किए गए देश में प्रवेश तक जाते हैं। जैसा कि हमने भजन 78 में देश में प्रवेश और वहां होने वाली मूर्ति पूजा के बारे में देखा, वैसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। हम जमीन देने पर ही रुक जाते हैं। यह भूमि का वह विचार है जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उस समय का प्रतिनिधित्व कर सकता है जब इसराइलियों को या तो उनकी भूमि से अलग कर दिया गया था या वे इसके साथ फिर से जुड़ गए थे। तोरा देने की चूक में मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। सिनाई के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि स्पष्ट रूप से भजन के अंत में कानून का पालन करना आवश्यक है, लेकिन इसके देने का कभी उल्लेख नहीं किया गया था। ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि यह सुनहरे बछड़े की विद्रोही परंपरा के साथ बहुत करीब से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने इसे छोड़ दिया है। शायद इस विशेष स्तोत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ईश्वर का उत्थान है क्योंकि वह यूसुफ का परीक्षण करता है। वह इसराइल को बढ़ाता है। वह इसे अकाल कहते हैं। वह सीधे तौर पर विपत्तियों को लागू करता है। निर्गमन से लेकर भजन तक ईश्वर की भूमिका में भारी बदलाव आया है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, उसे इस मास्टर कठपुतली के रूप में चित्रित किया गया है जो हर घटना को ठीक उसी तरह नियंत्रित करता है जैसे वह चाहता है ताकि उसके उद्देश्य पूरे हो सकें। तो यह हमें भजन 105 के अंत तक लाता है जो भजन 106 से बहुत अलग है, जो एक और लंबा भजन है, लेकिन जोर कहीं अधिक सकारात्मक है क्योंकि भजनकार इस काम से उन व्यक्तिगत नकारात्मक चीजों को फिल्टर करता है। यह निर्गमन स्तोत्रों पर अपने शिक्षण में डॉक्टर डेविड इमानुएल हैं। यह सत्र संख्या 3 है। भजन 105 याद रखें और आज्ञा पालन करें।